सबसे ऊंचा समय कौन सा? तीर्थ यात्रा करें, ऐसे कमाए, सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा ऊंचा समय कौन सा? बड़े में बड़ा सुखदाई, पुण्यदाई, कल्याणकारक समय कौन सा? कि जिस समय भगवत तत्व का विचार किया जाए, पैसे का विचार, बीमारी का विचार, शत्रु के विचार से अशांति पैदा होती, मित्र के विचार से राग पैदा होगा, दुनिया के विचार से झंझट पैदा होती, स्वर्ग के विचार से स्वर्ग की वासना पैदा होती, लेकिन भगवत विचार करने से और सबसे ज्यादा में ज्यादा जब पुण्य की घड़ियां जोर मारती, अधिक से अधिक पुण्य पुंज जब जोर मारता है, तब भगवत विचार करने का अवसर मिलता है। कुछ लोग चुपचाप निर्विचार होकर बैठ जाएंगे, निर्विचार तो नहीं सुन्न होकर बैठ जाएंगे, तो जितना जाना है समझा है उसी में घूमेंगे, आगे नहीं जा सकते। आगे दुनिया का सुना है और सुनेंगे तो उसी में, लेकिन भगवत विचार अपुरुष अपूर्व अतिशय जो पहले कभी नहीं मिला है, और जिसके मिलने के बाद दुख और सुख की लालच टिक नहीं सके, पाप और पुण्य गला दबोच न सके, वो ईश्वर विचार। सबसे उत्तम समय पुण्यमय वेला है कि जब ईश्वर विचार करे कि आत्मा परमात्मा क्या, परमात्मा में हमारे में क्या दूरी है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। बोले जो सत है, सत किसको बोलते, जो पहले था अभी है बाद में, अमाना नहीं ज माना जन्म ना, जिसका जन्म नहीं वह अजन्मा ईश्वर। कृष्ण जयंती, राम नवमी, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ये सब मनाई जाती, लेकिन अज जयंती नहीं मनाई जाती, ब्रह्म जयंती नहीं मनाई जाती। जो परमात्मा अजन्मा है वो सत्य है, ये ईश्वर विचार हुआ। जो परमात्मा अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, अज है अविनाशी है, वो सत है। सत मानो पहले था अभी है बाद में रहेगा। वो सत है, वो चेतन स्वरूप भी है। जो सत है वह चेतन है, वही आनंद स्वरूप है। जीभ में कोई ऐसी दवा लगा दी जाए जिसको स्वाद का ज्ञान न हो तो सुख क्या होगा, नाक में ऐसी दवा लगा दी जाए जिस सुगंध का ज्ञान न हो तो सुख क्या होगा, मन सुन पड़ा है ज्ञान नहीं तो सुख क्या होगा। तो जो सत है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसी से सुख का एहसास होता है, उससे सुख का अनुभव होता है। तो उस सुख स्वरूप ईश्वर का, ज्ञान स्वरूप ईश्वर का, आनंद स्वरूप ईश्वर का, अज अविनाशी ईश्वर का जब विचार होता है, वो सबसे बड़े में बड़ी ऊंची वेला है। बहुत पुण्यों का फल जोर करता है, सच्चाई का फल जोर करता है, सत्कर्म का फल जोर करता है, गुरु की कृपा एकदम ज्यादा छलकती है, तब आदमी ईश्वर के विषय विचार सुन सकता है, कर सकता है और उसमें स्थिति करने की ललक लगती। जब तक ईश्वर में स्थिति नहीं हुई तब तक माया में भटकना ही पड़ेगा। और माया में परिवर्तन है, अनित्यता है, दुख है, सुखाभास है, सुख का आभास और दुख ढेर, उसको बोलते माया। कि जिस समय सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, अज अविनाशी ईश्वर के बारे में विचार सुनने को मिले, विचार करने का अवसर आए, वो सबसे ऊंचे में ऊंचा समय है, कीमती में कुमती घड़ियां हैं। ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का जप करना अच्छा है, पवित्र है। ईश्वर की प्रीति के लिए सत्कर्म सेवा करना ये भी अच्छा है, लेकिन उनसे भी ऊंचे में ऊंची घड़ियां वह है जिस घड़िया में भगवत तत्व का विचार सुनने को मिल जाए, भगवत तत्व का विचार करने को मिल जाए और भगवत तत्व में विश्रांति पाने की ललक लग जाए। इससे बड़ा कोई पुण्यमय समय नहीं हो सकता। भगवान का एक नाम है आज, अमाना नहीं, जब माना जिसका जन्म नहीं होता उसका नाम भगवान, जिसकी जयंती नहीं होती उसका नाम भगवान ब्रह्मा। और अवतारों की जयंती होती है, जो जन्मता है उनकी जयंती होती है, लेकिन भगवान अज है, भगवान का जन्म नहीं होता। तो बोले भगवान कृष्ण प्रकटे जन्मे, भगवान राम जन्मे, नहीं ध्यान देना। अब ईश्वर और जीव का विचार चलेगा। जो कर्म के बंधन से प्रकृति के शरीर में कर्म के बंधन से आए उसको बोलते जन्म। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और उसको सुख दुख, बीमारी, रोग, तंदुरुस्ती आदि के थपेड़े भी लगते हैं जिसका जन्म होता है। तो ईश्वर का जन्म नहीं होता, बोले नहीं। ब्रह्म का जन्म नहीं होता। घड़े के आकाश का तो जन्म होगा घटाकाश, मठ के आकाश का जन्म होगा मठाकाश, मेघ के आकाश का जन्म होगा मेघाकाश, लेकिन आकाश का वास्तविक में जन्म नहीं होगा। तुमने घड़ा बनाया तो घट आकाश, आकाश का जन्म नहीं हुआ, घट की आकृति हो। मठ बनाया तो मठ की आकृति हो, मेघ हुआ तो मेघ में आकाश आया। तो ये आकृति में आकाश आया, ऐसे ही कर्म बंधन से शरीर में आए तो जीव आत्मा, तो जीने की इच्छा वाले संस्कारी अंतःकरण में जन्म का आभास हुआ, लेकिन आत्मा का जन्म नहीं हुआ। घड़े का जन्म हुआ, आकाश का जन्म नहीं हुआ। मठ का जन्म हुआ, लेकिन मठाकाश का जन्म नहीं हुआ, आकाश का। मेघ का जन्म हुआ, लेकिन मेघाकाश का जन्म नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही जीव का जन्म होता है, देवताओं का जन्म होता है, प्रकटते हैं देवत्व में, रक्ष यक्ष राक्षस आदि सबका होता है, जीव जंतु का, लेकिन आत्मा परमात्मा का जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता उसको बोलते अज। जो अज है वो अविनाशी है। जो जन्मा नहीं तो उसका विनाश कैसे होगा। तो भगवान आज है अविनाशी। जो आज है अविनाशी है वे चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। बिना ज्ञान के सुख नहीं होता। नाक में ऐसी दवाई लगा दे तो सुगंध का पता नहीं चले तो क्या सुख होगा, जीभ में सूखा रोग हो जाए तो मिठाई का स्वाद का पता नहीं चलता। तो पता चलता है उसी में सुख है, ज्ञान में ही सुख है। तो भगवान सत भी है चेतन भी है, तो चेतन में ज्ञान होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता। और भगवान आनंद स्वरूप है, उसी से सुख तरंगित होता है। और वे सभी के आत्मा बने बैठे हैं। तो भगवान का जीव आत्मा अंजीवत्व के भाव का जन्म होता है, जीव आत्मा का जन्म नहीं होता। घड़े का जन्म होता है, आकाश का जन्म नहीं होता। मठ का जन्म होता है, लेकिन मठ में आए हुए आकाश का जन्म नहीं होता। ऐसे ही वास्तविक में जो हमारा आत्मा परमात्मा है उसका जन्म नहीं होता, तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती। शरीर की मृत्यु होती है, उसके बाद भी हम रहते हैं, ठीक है ना। तो शरीर मर जाता है तो हमारी मौत नहीं होती, क्योंकि हम आत्मा हैं। ये बात जान लेने से जो सुख मिलता है, जो आत्मिक शक्तियां विकसित होती है, वो दुनिया भर के सर्टिफिकेट वालों को वो सुख नहीं मिलता। हिंदुस्तान में तो क्या कई देशों में उनकी बराबरी का कोई विद्या विद्वान नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट मिला है रूप नारायण को, MD फलाना डिंगना, MS ये वो, LDLET कईयों को PhD करवाया। बोले बापूजी, कई देशों ने मिलकर मेरे को इस युग का, इस समय का श्रेष्ठ विद्वान, बहुत डिग्रियां वाला व्यक्ति घोषित किया, लेकिन आपके चरणों में आता हूं, अब मेरे को वही शांति चाहिए, वो आत्मा का ज्ञान चाहिए। साल में 10-5 बार तो आ ही जाते, अभी जिंदे हैं। गुरु पूनम को भी आए थे, ऐसे दीक्षा लिया गुरु जी, अब वही चीज। तो उस परमात्मा के विषय का ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। इंद्र का राज्य मिल जाए और दूसरे तरफ आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता हो तो इंद्र के राज्य को छोड़ दो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाना चाहिए। इतनी ऊंची चीज, सारे भारत का नहीं, सारे वर्ल्ड का नहीं, इंद्र का राज तो सारी दुनिया से बहुत ऊंचा है। 12 मेघ उसके आज्ञा में रहते, 33 करोड़ देवता उनके अधीनस्थ। ऐसा इंद्र का राज्य मिले, इंद्र पद मिले, तो भी इंद्र का पुण्य नष्ट होकर इंद्र के पद का नाश होगा। आत्म पद पा लिया तो अविनाश। इसलिए उपनिषद में आता है, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय, शक्रादय माना इंद्र आदि, शक्रादय देवताः, यत पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न उपगच्छति। उस जिस पद को, आत्म पद को पाए बिना इंद्र आदि देव अपने को कंगाल मानते, क्योंकि इंद्र पद का नाश हो जाए। लेकिन आत्म पद का नाश नहीं होता, ऐसा आत्म पद पाकर योगी को अभिमान नहीं होता, यह आश्चर्य। एक अवधूत बाबा थे, आत्मपद को पाए है स्वस्थ मजबूत शरीर, अखंड आनंद जी महाराज के संपर्क में आए। वो उड़िया बाबा को, हरि बाबा को या जगत गुरु शंकराचार्य पद पे बैठे हुए को प्रणाम नहीं करते थे, इतने मस्ती में रहते थे। शिवो हम सो हांडी रखते थे, आत्म सुख में इतने मस्त कि गंगा किनारे जंगलों में ऐसे विचरते। भूख लगी तो किसी किसान या किसी कहीं भी भिक्षा ले ली खा। एक किसान ने पूछा, बाबा आप कौन से खेत के गेहूं पसंद करेंगे? बोले हम बेफिक्री के गेहूं खाते। वही साधु उनके साथ थे, साधुओं को बिठा के वे चले गए। बोले आप यही अपना डेरा डालो यात्रा के, तो मैं जब तक नहीं आऊं। थोड़ी देर के बाद वो गंगा किनारे के गांवों में उनको बहुत लोग मानते थे, उन लोगों को बुला के आए और उन लोगों के सामने संतों को दंडवत प्रणाम किया। जो संत उनको प्रणाम करते थे उन संतों को अपने भक्तों के सामने दंडवत प्रणाम कर दिया। कितने निराभिमान। और उन देहातियों को, किसानों को बुला के बड़े संत हैं, इनको दंडवत प्रणाम करो, इनका सत्संग सुनो। खुद तो इंद्र जिसके आगे अपने को नन्हा मानता है ऐसे पद को पाए, लेकिन लोगों की संतों में श्रद्धा हो और लोगों को भगवत चर्चा मिले, इसलिए स्वयं संतों को दंडवत प्रणाम कर ले। वैसे तुम तो मेरे साधक हो, भक्त हो, लेकिन कहीं है इलाके में जाए और तुम लोग सत्संग करने वाले हो और मैं कई आदिवासियों को ले आऊं और तुमको दंडवत प्रणाम करूं, तो कैसा लगे तुमको? आदिवासियों की श्रद्धा बढ़ाने के लिए मैं खुद आदिवासियों की, मेरे में श्रद्धा है और मेरी, मैं सुरेश को दंडवत प्रणाम करूं, ये बड़े महाराज है, ये जो वचन कहे सुन, तो उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, ताकि उनका मंगल हो। श्रद्धा बिना धर्म न हो, श्रद्धा के बिना धर्म लाभ नहीं होता। तो धर्म लाभ का ज्यादा से ज्यादा घड़ी और पुण्य की बेलावा है कि ईश्वर के विषय में विचार हो। तो ईश्वर सत्य है, जो सदा रहे उसे सत्य कहते, जो सत्य है वो चेतन है और जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है। तो चेतन से ही सुख मिलता है ना। मुर्दे को मिठाई मुंह में डालो तो सुख होगा क्या? नहीं। रोबोट के मुंह में मिठाई डालो तो उसको स्वाद आएगा क्या? नहीं। रेलवे इंजन में शरबत डाल दो तो क्या उसको मजा आएगा? लेकिन तुम्हारे शरीर के इंजन में जरा शरबत चखा दो, जरा चरपरा, तो सत्य है वो परमात्मा। जो सत्य है वो चेतन है, जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है। तो उस परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद। उसी सच्चिदानंद से जगत की उत्पत्ति होती है, उसी से स्थिति होती है, और उसी सच्चिदानंद में रोज लोग कुछ नहीं करते। नींद में क्या करते हो तुम? कुछ नहीं करते हो। शरीर की थकान मिटाता है, मन की थकान मिटाता है, बुद्धि को ताजगी देता, दूसरे दिन काम करने के लायक हो जाते हो। वही सच्चिदानंद आत्मा है तुम्हारा ईश्वर। तो बोले भगवान कृष्ण जन्मे, भगवान राम जन्मे, भगवान वो जो अजन्मा, तो ये तो भगवान जन्मे, तो ये भगवान सच्चे नहीं हुए? नहीं, ये भगवान सच्चे हैं और इनका जन्म भक्त की भावना से दिखता है। वो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा भक्त की तपस्या और भावना से उस अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त भगवान में, सच्चिदानंद में वो आकृति होती है, मुख की, हाथ की, पैरों की। वास्तव में वो चिन्मय होते हैं, जैसे पर्दे पर व्यक्ति दिखते हैं, हंसते दिखते, खाते दिखते, लड़ते दिखते, झगड़ते दिखते, लेकिन है सब लाइट लाइट, पट्टियां और लाइट। ऐसे ही भगवान की माया और भगवान तत्व भक्त की भावना से उस प्रकार दिखते हैं, जैसे साधारण आदमी बोलता है, चलता है, खाता है, लेता है, देता है। ऐसे अवतार में और साधारण आदमी में क्या फर्क है कि साधारण आदमी कर्म के बंधन से, जीने की इच्छा से शरीर में पैदा हुआ, भगवान कर्म के बंधन से और जीने की इच्छा से जीव होकर नहीं आए। भक्त की भावना समाज के कई लोगों की एक प्रकार की सद्भावना से भगवान अपने स्वभाव में दिखने लगे। प्रकाश तो सर्वत्र है, लेकिन पर्दे पे वो प्रकाश विशेष कोई व्यक्ति के रूप में दिखने लगा, तो पर्दे से पकड़ के ले जाओगे उस व्यक्ति को तो आएगा हाथ में, नहीं आए। वो जैसे और आदमी को जंजीर डालते हैं हाथ में अथवा गले में फांसा बांधते, ऐसे पर्दे के ऊपर जो कोई व्यक्ति दिखता है उसको आप बाहर की जंजीर लगा सकते क्या, रस्से से बांध सकते? नहीं। हाँ, वो रस्से से बंधा हुआ दिखे, जंजीर से लगा हुआ दिखे, तो फिल्म की जंजीर होगी, तुम्हारी जंजीर नहीं होगी। टीवी में कोई आदमी को आप अपने रस्सी से नहीं बांध सकते, प्रकाश में दिखता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा अपने प्रकाश में ही अवतारों की लीला करते, तो अज है फिर भी जन्म धारण करते हुए दिखते हैं। तो वह परमात्मा कभी कभी अवतार धारण करते तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह से आ जाते, वो भरपूर है वहीं अपनी आकृति प्रतीत करा देते। फिर 100 साल, 125 साल मानुष्य जीवन काल, 1000 साल ऐसे भगवान सभी का आत्मा बनकर बैठे, तो वो आत्मा अज है, अविनाशी है। तो बचपन नाश हो गया, उसको जानने वाला नाश हुआ क्या? नहीं। दुख आए नाश हो गए, उसको जानने वाला नाश हुआ क्या? सुख आए नाश हो गए, उसको जानने वाला? बीमारी आई चली गई, तो आ आ के जो चले जाए और फिर भी जो न जाए वो तुम्हारे से कितना दूर है? 1 फुट की दूरी है उसकी, 1/2 फुट, 1 इंच, 1/2 इंच, 1/4 इंच, 1/4 इंच का 1/10 हिस्सा तुम्हारे से दूर है? नहीं। हाजरा हजूर जागंदी ज्योत, ज्ञान स्वभाव सदा जागंदी ज्योत है। नींद अच्छी आई उसको भी जानते और नींद अच्छी नहीं आई उसको भी जानते, नहीं जानते, वही आज है। नींद का जन्म होता है और नींद की मृत्यु होती है, लेकिन नींद के पहले जो था नींद के बाद में जो रहता है वो नींद के समय भी रहता है कि नहीं रहता? प्रभु तुम नींद के पहले रहते हो, नींद के समय रहते हो, नींद के बाद रहते हो, मेरे आत्मदेव ओम आनंद स्वरूप। फिर मन इधर उधर जाए, ओ मन इधर उधर जाता है उसको देखने वाला मेरा अज अविनाशी। लोग मन को एकाग्र करने में लगते हैं तो मन और उछलता है, अथवा मन में जैसा आया ऐसा करने को लगते तो संसार में फंसते। मन में जो आए उसमें भी न लगो और मन से भिड़ो भी नहीं, तुम तो भगवान के अज अविनाशी परमात्मा के अमृत स्वरूप पुत्र, खाली चिंतन करो उसे मिल जाओ। जैसे तरंग पानी का चिंतन करे और तरंग अपने को जान ले तो भी पानी को जान लिया, पानी को जान ले तो भी अपने को जान लिया, ऐसे तुम अपने को जान लोगे तो भगवान को जान लोगे और भगवान को जान लोगे तो अपने को जान लोगे। ये है भगवत विचार, और ये भगवत विचार में थोड़ी भी गति हो गई तो फिर संसार की कोई भी बात का ज्ञान ये हो जाए। कई इंजीनियर मेरे शिष्य है लेकिन मैं किसी इंजीनियर का चेला नहीं, कई डॉक्टर मेरे चेले हैं मैं किसी डॉक्टर का चेला नहीं, कई वकील मेरे चेले हैं, 2-5 नहीं कई हैं, कई जज मेरे चेले हैं मैं किसी जज का चेला नहीं, कई सेठ मेरे चेले हैं मैं किसी सेठ का चेला नहीं, कई नेता मेरे चेले हैं मैं किसी नेता का चेला नहीं। बस अज अविनाशी परमेश्वर का विचार ये सबसे ऊंचे में ऊंचा है। वो पा लिया ध्रुव को उसकी तुसोतली माने थप्पड़ मार, अपनी सगी मां की पास आया रोता हुआ, मां मां मेरे को, उस मां ने थप्पड़ मार दी, बाप के गोद में बैठने नहीं दिया। मां ने कहा बेटे तुमने अपने तप नहीं किया इसलिए दुख भोगना पड़ता है, तो मां तप कैसे होता है? बोले गुरु मंत्र देते हो जपते जपते ध्यान में, भगवान के ध्यान में बैठा जाता है। बोले गुरु कहाँ मिलते? बोले एकांत में जंगल। अभी तो बच्चा है बेटे सो जा, वो बाल सहलाती सिर सहलाती हुई गुरु को सुनाने लगी माँ, वो सुनाने वाली सो गई लेकिन गुरु के मन में चटका लगा के जाऊं गुरु को खोज, वो धीरे धीरे काट से उतर के जंगल में चला गया, वो चलता गया भागता गया जंगल में। सुबह सुबह उसको देव ऋषि नारद जी मिले, बोले अभी तुम बच्चा है घर जाओ, तुम्हें क्या करेगा? भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान से मिल। बोले महाराज क्या पता कब मौत आ जाए, पता नहीं, भगवान का मंत्र गुरु से मिलता है। तो नारद जी ने परीक्षा ली और उसको मंत्र दिया, अद्रु जपते जपते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जबते जबते एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे ध्यान में आगे 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 बढ़ते गए, 6 महीने के अंदर भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहीं से आए नहीं, व्याप रहे थे और ध्रुव को जिस भगवान की भावना थी वही उसी भाव के भगवान नारायण प्रकट हो गए। फिर ध्रुव को स्पर्श कर दिया तो ध्रुव की सारी विद्याएं प्रकट हो गई। तो ध्रुव ने पूछा कि भगवान आप कौन है, मैं कौन हूं, जगत क्या है? तो ध्रुव के मन में भगवान के दर्शन से भगवत विचार पैदा हुआ। तो भगवान बहुत खुश हुए कि भगवान क्या है, मैं क्या हूं और जगत क्या है। ये भगवान की तपस्या 6 महीना किया और भगवान के दर्शन किया तभी इतना पुण्य जोरदार हुआ कि भगवान के विषय का सवाल ध्रुव ने भगवान के दर्शन के बाद उठा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा ध्रुव मेरी कृपा से तुम्हें देव ऋषि नारद जी का सत्संग मिलेगा, और सत्संग में भगवत तत्व का विचार मिला ध्रुव को। तो अपन लोग कितने भागशाली हैं, ध्रुव को भगवान के दर्शन के बाद भगवत तत्व के विचार, अर्जुन को भगवान के दर्शन के बाद भगवत तत्व का विचार करने का ज्ञान भगवान कृष्ण जी ने दिया। अर्जुन प्रश्न करता है किम ब्रह्म आदि किम, ब्रह्म किसको कहते, परमात्मा किसको कहते, कर्म की गति क्या, ये सब अर्जुन के अंदर भगवान के विषय सवाल। अध्यात्म क्या है, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, तो अर्जुन को ये प्रश्न उठे और भगवान ने उनका उत्तर दिया और अर्जुन के सारे दुख मिट गए। भगवान के दर्शन हुए तभी भी दुख रह गए थे, लेकिन भगवत तत्व का विचार हुआ तो दुख मिट गए। आपको ऐसे भगवत तत्व के विचार में मैं ले चल रहा हूं, आप कितने भागशाली हैं, आपको राम राम, नारायण नारायण नारायण, भगवत तत्व का विचार। दुख आए तो उसमें बहुमत, सुख आए तो उसको बहुमत, जानने वाला कौन, जानने वाला तो मेरा भगवान है, आज है बस। दुख और सुख की चोट कम हो जाएगी और आज अविनाशी की निकटता बढ़ती जाएगी। कितना आसान तरीका है दुखों से बचने का, कितना आसान तरीका है सुखों की लालच से बचने का, और महान भगवान को पाने का कितना ऊंचा सत्संग। ध्यान किया, समाधि लगाई तो विक्षेप नहीं रहा, लेकिन भगवत विचार तो सत्संग में ही मिलेगा। इसीलिए बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भी भगवत विचार का सत्संग बहुत ऊंची उपलब्धि। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो। इंद्र पद का अंत हो जाएगा, प्रधान पद मिला, प्रधानमंत्री पद मिला, उसका भी अंत हो जाता है। बेचारे कई प्रधानमंत्री बदल गए लेकिन आत्मपद का अंत नहीं होता। वो ब्रह्म ज्ञान के सत्संग विचार से मिलता है आत्मपद। ये आत्मपद पाने की बुद्धि मनुष्य जीवन में हाथी घोड़े गधे कीट पतंग निगुरे लोगों के पास नहीं होती, मनुष्य जीवन में। और सत्संग सुने तब ये आत्मपद पाने की बुद्धि बनती।